तुम्हारी याद बहुत आती है मेरे बाबा, तुम्हारी याद बहुत आती है। नैन में प्रेम के मोती भी साथ लाती है मेरे बाबा, तुम्हारी याद बहुत आती है।
ओम शांति। आप सभी प्यारे बाप दादा के नूरी रतन, विशेष बाप दादा और दादियों के निमंत्रण पर यहां मौन भर्ती करने के लिए पधारे हैं। भर्ती करने के लिए कहें या भर्तीमय होने के लिए कहें, क्योंकि भक्ति माना ही अपने अंतःकरण को या अपने भीतरी जगत को इनरिच करना, उसको संपन्न बनाना। तो आप सभी का इस प्यारे बाबा के घर में, मधुवन में बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बाबा का ये घर आपका अपना घर, उसमें क्या कहे हाँ, उसमें आपका बार बार बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। सर्वप्रथम हमारे सामने विराजमान है आदरणीय शीलू दीदी जी। यूं तो आप सभी उनसे परिचित ही हैं। शीलू बहन, इन्होंने अपने मुंबई से जय हिंद कॉलेज से बीएससी करने के पश्चात अपना जीवन पूर्ण रूपेण समर्पित किया और प्यारे बाप दादा की प्रेरणा अनुसार और दादियों की इच्छा अनुसार आपने मधुबन पांडव भवन में राजयोग शिविर का कार्यभार संभाला। और तब से ही अब तक आपको मालूम है योग शिविर कराते ही रहते हैं, अनेक आत्माओं को उनका आत्मदीप जगाने के निमित्त बनते हैं। आज तो हम टीवी चैनल्स पे, अनेक टीवी चैनल्स पे अनेक भाई बहनों को सुनते हैं, लेकिन मुझे जहां तक याद है कि सर्वप्रथम सोनी चैनल पर शीलू बहन के ही कार्यक्रम प्रसारित हुआ करते थे और उससे भी अनेक लोगों को संदेश मिला। आप सरलता और नम्रता आपकी विशेषता है, आपकी भाषा में स्पष्टता और मृदुता है, आप बहुत मिलनसार हैं। एजुकेशन विंग का कार्यभार भी आप संभालते हैं और अभी आज हमारे सामने भक्ति का लक्ष्य स्पष्ट करेंगे। हम भक्ति में तो आए, लेकिन अगर पहले से ही लक्ष्य मिल जाता है तो फिर लक्ष्य अनुसार हम चलते रहते हैं। और आपको मालूम है कि ना केवल पांडव भवन मधुबन में, जैसे आपको मालूम है अभी तो हमारी दादियां कितनी हैं, लेकिन मधुबन पांडव भवन में भी यहाँ पर दादियों की एब्सेंस में या वैसे भी कारोबार संभालना, क्लासेस कराना और देश विदेश में आप चक्कर लगाकर नॉन बीकेस और बीकेस के कार्यक्रम भी आप करते ही रहते हैं। मैं अभी आदरणीय शीलू बहन से विनम्र अनुरोध करूंगी कि आप भक्ति का लक्ष्य स्पष्ट करें। आदरणीय शीलू बहन।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हिसार हरियाणा से आप सभी भाई बहने आए हैं। हरियाणा को हम कहते हैं माया को हराने वाले, माया को हराकर सदा हर्षित रहने वाले हिसार वाले ऐसे हैं। तो जो माया को हराकर सदा हर्षित रहता है उसके जीवन में कभी भी गम नहीं आ सकता, दुख नहीं आ सकता। परंतु फिर भी शक्ति भरने के लिए अपनी बैटरी को रिचार्ज करने के लिए, बादल भरने के लिए मधुबन में आते हो। तो मधुबन तपोभूमि, वरदान भूमि, परिवर्तन भूमि है। यहाँ कदम कदम पर, पल पल पर हम अनुभूतियों के सागर में जा सकते हैं, क्योंकि ब्रह्मा बाबा, मम्मा, सभी दादियाँ, सब वरिष्ठ भाई बहने, इन्होंने यहाँ कितनी तपस्या की है और इस तपस्या के बल पर क्या परिणाम स्वरूप यहाँ का वातावरण बहुत ही चार्ज्ड है, शक्तिशाली है। और बाबा कहते हैं एक दिन आएगा, दूर दूर से आत्माएं आएंगी, खींची हुई आएंगी, मधुबन लाइट हाउस माइट हाउस बन जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि कैसे ये सब अब संभव हो रहा है, दिखाई दे रहा है। परंतु इनको इतना शक्तिशाली बनाने वाले तो हम बच्चे ही हैं। तो आप सभी मधुबन में आए हो भट्टी करने के लिए, यह मौन तपस्या योग भट्टी है। तो इस भट्टी में आप क्या करेंगे? वैसे तो सेंटरों पर भी आप भट्टी करते हैं, वहां भी मौन में रहते होंगे कई। आजकल हमने देखा है ब्राह्मण भाई बहने सप्ताह में एक दिन मौन रखते हैं। वैसे भी जो रखते हैं यहाँ बैठे हाथ उठाएं, कोई रखते हैं? कोई नहीं। अच्छा, कोई नहीं रखते हैं? एक हाथ उठा रही है। आजकल बहुतों ने ये लक्ष्य रखा है कि हफ्ते में एक दिन हम मौन में रहेंगे। तो यहाँ तो आपको चार दिन मौन में रहना है। रह सकेंगे मौन में? आवाज में आना सहज है या मौन में रहना सहज है? सहज क्या है सच्ची? मौन में रहना सहज है या आवाज में आना सहज है? तो आवाज में तो बहुत जल्दी आ जाते हैं, और मौन में रहो कहें तो मुश्किल होता है कई बार। चुप कैसे रहेंगे? आत्मा तो है ही शांत स्वरूप। तो इसीलिए बाबा कई बार पूछते हैं कि सहज तो साइलेंस में रहना होना चाहिए, लेकिन देह में आने के कारण आवाज में आने की आदत पड़ गई है। तो इसीलिए आवाज में आना सहज लगता है और मौन में रहना मुश्किल लगता है। और कई ऐसे भाई बहने हैं जो मौन में रहने का प्रयत्न तो करते हैं, पर वो केवल मुख का मौन रखते हैं। परंतु मुख का मौन तो कोई बड़ी बात नहीं है, चलो मुख से कुछ नहीं बोले, पर मन का भी मौन हो, कुछ सोचे भी नहीं, ये हो सकता है? कि केवल मुख का मौन रखेंगे। बैच तो पहन लिया ना, मौन भट्टी में आए हैं तो मौन भट्टी का बैच पहन लिया। एक बार किसी ने, कोई विदेशी भाई था, साइलेंस का बैच पहना हुआ था। साइलेंस का बैच पहन के विदेशी बहुत घूमते हैं, खास बनाते हैं। तो पर बात कर रहा था तो हमने उनको पूछा कि आपने तो साइलेंस का बैज लगाया है और आप बात कर रहे हो। थोड़ा मजाकी टाइप था, जोकर जैसा था, और साइलेंस का बैज लगा और बातें कर रहा है। तो कहता है कि ये तो दूसरों के लिए है ना, दूसरे वो पढ़ेंगे ना, मैं तो पढ़ ही नहीं सकता हूँ। जो मैंने लगाया है ना बैज, वो मैं थोड़ी पढ़ सकता हूँ, वो दूसरे मेरा पढ़ेंगे ना। तो वही मौन भट्टी में, इसीलिए उनको मेरे से बात नहीं करनी चाहिए ना। मैं थोड़ी पढ़ सकता हूँ, मैं तो ऐसे कैसे देखकर पढ़ूंगा। इसलिए बैज इसलिए लगा कि मेरे से कोई बात नहीं करे। अब इसलिए ये दूसरों के लिए है ताकि दूसरे सावधान रहे। परंतु ऐसा नहीं सोचना है आपको कि बैच तो लगाया है लेकिन दूसरे मेरे से बात न करें। अब मैं करूंगा। बाकी ऐसे भी नहीं है कि इतने स्ट्रिक्ट रहे, कोई जरूरी बात है तो अवश्य एक दो से बोलेंगे तो सही। कई तो चिट्ठी लिख करके देते हैं, कई इशारों से सुनाते हैं, पर हमने देखा है कि केवल इशारों से कुछ कहते ना, दूसरे इतना समझते नहीं है। अब आप, आपके मन में क्या है और आप इशारे से कह रहे हैं, उसको कैसे समझ में आएगा। इसलिए कहना तो पड़ेगा। लेकिन जहां 10 शब्द की बजाय 2 शब्दों में काम हो सकता है तो 4 शब्द मुख से नहीं कहे, 2 शब्द इनफ, या 1 शब्द बस। कई चिट्ठी लिख करके देते, अब जब तक चिट्ठी लिखे तब तक भी तो टाइम लगता है ना लिख करके देने में, पर उसमें भी तो संकल्प तो चलाने ही पड़ते हैं। तो इस मौन भट्टी में आप क्या लक्ष्य रखेंगे? सबसे बड़े से बड़ा लक्ष्य है कि मन का भी मौन हो, केवल मुख का मौन नहीं। अगर दूसरे बोल रहे हैं तो आप न बोलें, आप सुनते हुए भी न सुने, जिसको बाबा कहते हैं देखते हुए भी न देखें, सुनते हुए भी न सुने। क्योंकि कानों को, आंखों को बंद तो नहीं कर सकते हैं, हाँ मुख को तो बंद कर सकते हैं, परंतु कानों को और आंखों को तो बंद नहीं कर सकते हैं। इसीलिए कान और आंख के लिए कहा जाता है कि सुनते हुए नहीं सुनो और देखते हुए नहीं देखो। परंतु मुख के लिए तो यही कहेंगे, बोलो नहीं, या कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, युक्ति युक्त बोलो, बहुत कुछ कह सकते हैं इसके लिए, या नहीं बोलो ऐसे भी कहेंगे। ये तो नहीं कहेंगे बोलते हुए नहीं बोलो जैसे देखते हुए नहीं देखो, पर बोल तो हमारे अपने हैं। तो इसीलिए मौन भट्टी का ये बहुत बड़ा लक्ष्य है कि मुख का मौन तो हो ही, लेकिन साथ साथ मन का मौन भी हो, और अगर जरूरी है तो 2 शब्द में, वो भी कम बोलो, धीरे बोलो, मधुर बोलो। चाहे दूसरा कैसे भी मेरे से बोले, पर मुझे क्या करना है? सबसे बड़ा बड़ी बात, अपने आप को हम देखें, दूसरे किसी को नहीं देखें। दूसरा जोर से बोल रहा है और हम उसको जोर से कह रहे हैं धीरे से बोलो ना, और हम जोर से बोल रहे हैं, तो वो धीरे से कैसे बोलेगा? अगर मैं चाहती हूँ कि दूसरा धीरे से बोले या शांत रहे, तो उसके लिए कहने की जरूरत ही नहीं है। अब हम शांत रहे या हम धीरे से बोले, वो अपने आप धीरे हो जाएगा, अपने आप शांत हो जाएगा, कहने की जरूरत नहीं है। पर इसलिए पहली आवश्यकता ये है कि हम अपने ऊपर ध्यान दें। ये चार दिन आपको अपने ऊपर ध्यान देना है। देख कैसे रहा हूँ, सुन कैसे रहा हूँ, बोल कैसे रहा हूँ, चल कैसे रहा हूँ, खा कैसे रहा हूँ, पी कैसे रहा हूँ या रही हूँ, सो कैसे रहा हूँ, जाग कैसे रहा हूँ, ये सब कुछ चेकिंग है। जो आज बाबा ने कल बाबा ने कहा, स्वप्न में भी ये देखना है, स्वप्न भी मेरे कैसे हैं। इतने हद तक इस मौन भट्टी में अपनी पूरी चेकिंग करनी है। ये चेकिंग करने का समय मिला है। सब कारोबार से आप दूर हैं, अपने अंदर में अपनी बुद्धि द्वारा मन को पूर्ण ट्रेनिंग देनी है। जैसे यहाँ मिलिट्री वाले आते हैं ना माउंट आबू में, तो तीन तीन मास इनका पीरियड होता है युद्ध के मैदान से या कहीं कुछ और होता है, तो वहाँ पर करने के बाद इनका पीस टाइम होता है। यहाँ माउंट आबू में पीस टाइम, शांति का पीरियड, पीस पीरियड कहते हैं ये लोग। तो उस पीरियड में ये लोग अपने ट्रेनिंग में बिजी रहते हैं, क्योंकि कोई यहाँ तो दुश्मन है नहीं जिसका सामना करना है। तो पूरा टाइम अपनी ट्रेनिंग, अपने अंदर में अपनी प्रैक्टिस। यहाँ देखेंगे माउंट आबू में मिलिट्री वाले दौड़ लगाते हैं, सुबह सुबह दौड़ लगाते हैं, देखना पूरा माउंट आबू में दौड़ लगाते हैं। फिर रात के समय वो प्रैक्टिस करते हैं बंदूक चलाना, क्योंकि अंधेरे में आजकल युद्ध वाले आतंकवादी या जो कुछ भी आते हैं दुश्मन, वो रात को ही ज्यादा करते हैं। तो रात को कैसे गोली चलानी होती है, कैसे देखना होता है, वो सब यहाँ ट्रेनिंग लेते हैं। माउंट आबू में ज्ञान सरोवर के रास्ते पर जाते हैं ना, तो वहां पर बहुत बड़ा मैदान है, तो वहां पर बंदूक भी चलाते हैं, कहाँ निशाना है वो सब करते हैं। ट्रेनिंग पीरियड है ये, परंतु उनको वो कहते हैं पीस पीरियड, क्योंकि और कोई भी टेंशन नहीं है, क्योंकि फिर उनको मैदान में जाना है। पर मैदान में जाने से पहले अपनी ट्रेनिंग। तो मधुबन में किस लिए आते हैं? अपनी ट्रेनिंग के लिए, जिसमें खुद को देखना है और लक्ष्य हमारा बहुत ऊंचा हो। आपके ये तीन चार दिन जो प्रोग्राम है उसमें एक एक दिन को अलग अलग लक्ष्य दिया गया है। जैसे कल आत्माभिमानी स्थिति है, तो सारा दिन मैं आत्मा होके देख रही हूँ, आत्मा होके बोल रही हूँ, आत्मा होकर सुन रही हूँ, आत्मा होके कर रही हूँ। हर मुरली में बाबा हमको पहली लाइन में यही कहते हैं, रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझा रहे हैं, रूहानी बच्चों से मिल रहे, रूहानी बाप, ताकि जब बाबा के सामने बैठे तो कोई भी देह भान में न हो। आत्माभिमानी स्थिति में रह करके बाबा के सम्मुख बाबा के महावाक्य सुने। तो दिखाई तो ब्रह्मा बाबा देता था, लेकिन ब्रह्मा बाबा को नहीं देखना है, शिव बाबा को देखना है। ब्रह्मा बाबा नहीं सुना रहे हैं, शिव बाबा सुना रहे हैं। अब जो दिखाई देता है, जिसके मुख से सुन रहे हैं, उसको नहीं देखना है, उसका नहीं सुन रहे हैं, लेकिन जो अंदर है शिव बाबा की आत्मा ब्रह्मा बाबा के साथ। बाबा कहते हैं ना, जैसे गुरु शिष्य साथ में बैठे हैं, तो ब्रह्मा बाबा ने अपना तन लोन में दिया हुआ है शिव बाबा को, और शिव बाबा मुरली चलाते हैं। तो साकार मुरलियां हम ऐसे ही सुने, भले टीचर भी कोई भी हो, लेकिन हम उस समय क्या सोचे, शिव बाबा ब्रह्मा मुख से मुरली चलाते हैं। तो इसलिए दृष्टि बदल जाती है, वृत्ति बदल जाती है, सामने तो कोई भी दिखाई दे। इसलिए बाबा कहते हैं कि देह को देखते हुए भी देह में भ्रकुटि में जो आत्मा विराजमान है उसको ही देखना है। और कितनी अच्छी बात ये है कि ये जो मस्तक है ना, ये सबका एक जैसा है। मस्तक से नीचे आएंगे तो सबका अलग अलग, आंखें अलग, नाक अलग, कान अलग, होंठ अलग, सब, और सतोक से फिर रजो, फिर तमो, ये सब स्थिति बदलती जाती है। पर मस्तक सबका देखो तो सबका एक जैसे। तो भक्ति मार्ग में तो नम्रता सिखाते हैं तो कहते बस चरणों को ही देखना है, चरणों को ही देखना है। पर बाबा ने तो हमको बहुत ऊंचा चढ़ा दिया है, ऊंचा चढ़ा करके अपने सिर का ताज बना दिया है। इतना बाबा हम बच्चों को स्वमान देते हैं, इस स्वमान दे करके ऊंचा चढ़ा दिया है। चाहे कोई अनपढ़ माता भी हो, उसका भी बाबा स्वमान चढ़ा देते हैं कि भले बच्ची तुमको दुनिया की पढ़ाई लिखाई नहीं आती है, परंतु भगवान को पहचान लिया, इनसे और ऊंचा क्या चाहिए। कितनी ऊंची बुद्धि बन गई। जो बड़े बड़े विद्वान पंडितों ने भगवान को नहीं पहचाना, और एक अनपढ़ माता ने भी भगवान को पहचान लिया, तो वो ऊंची हुई या विद्वान पंडित ऊंचे हुए? वो भी नेति नेति कहेंगे, वेदों में तो नेति नेति है, लेकिन बाबा के बच्चों ने पहचान लिया। तो एक तरफ बाबा हम बच्चों को इतना ऊंचा चढ़ाते हैं, और दूसरी तरफ फिर बाबा इतना ही निर्माण बनाते हैं, मेरा कुछ नहीं। क्योंकि मेरा कुछ है तो उसका अभिमान आता है, चाहे पोस्ट का अभिमान, चाहे धन का अभिमान, चाहे बुद्धि का अभिमान, बहुत कुछ अभिमान, कोई कला का अभिमान, कोई विशेषता का अभिमान। पर बाबा ने उसके लिए सबके लिए कह दिया, ये भी तो बाबा ने ही दिया है, तो बाबा का दिया हुआ है तो ये अमानत है मेरे पास। अभिमान किस बात का? अभिमान तो तब रखें जब मेरी चीज हो। भगवान का बनने से पहले ये मेरे पास नहीं था, बाबा का बनने के बाद ये बाबा ने दिया, तो अमानत है। तो बाबा एक तरफ तो इतना ऊंचा चढ़ा देते हैं, हर अव्यक्त मुरली में पहली लाइन तो नशे की होती है, बाबा कौन कौन से बच्चों को देख रहे हैं, पूरी लाइन देखो कितने स्वमान एक ही लाइन में। लिखते जाओ और नशा चढ़ता है जब अव्यक्त मुरली लिखते हैं, बाबा कौन से बच्चों को देख रहे हैं, कौन से बच्चों से मिल रहे हैं, तो नशा चढ़ता जाता है लिखते समय, कौन हूँ मैं, कौन हूँ मैं। तो बाबा हमको उस नजर से देखते हैं, फिर भले बाद में मुरली में बाबा हमसे पूछेंगे, ऐसा अपने आप को समझते हो, होली हंसो, पूर्वज हो, पूज्य हो, क्या नहीं बाबा हमें टाइटल देते हैं। लेकिन फिर बाबा पूछते हैं कि ऐसे हो, तो उस समय क्या कहेंगे बाबा को? नहीं है, नहीं है। फिर बाबा कहते जो समझते हैं हाथ उठाओ, तो सब हाथ उठा लेते हैं। तो बाबा कहते आपके मुख में गुलाब। फिर कभी स्थिति नीचे हो जाती है, फिर भूल जाता है, यहाँ क्यों नीचे स्थिति हुई, भूल गए कि क्या स्वमान भगवान ने हमें दिया। तो इसीलिए वो स्वमान भी सदा याद रहे, पर जितना ही स्वमान उतना ही निर्माण, ये दोनों का सुंदर बैलेंस। ये कैसे रह सकता है जब हमारी दृष्टि वृत्ति स्मृति में बस आत्म अभिमानी स्थिति हो। हर एक को उसी नजर से देखें। भक्ति मार्ग में तो कहते हैं कि सबको, सब में भगवान देखो, सब में भगवान देखो, हर एक में। इसलिए कण कण में भगवान देखो, क्या पता किस रूप में भगवान आ जाए। इसलिए हर एक में भगवान देखो, सर्वव्यापी की पॉइंट के अनुसार भी सब में भगवान देखो। पर अभी हम जानते हैं कि भगवान देखो नहीं, पर क्या देखो? आत्मा देखो। तो जैसे ही हमारी वृत्ति में स्मृति में वो आत्म अभिमानी स्थिति है, तो ऑटोमेटिकली अंतर में नशा भी चढ़ेगा निश्चय बिना तो नशा नहीं चढ़ेगा, निश्चय के बाद नशा चढ़ेगा, और जितना नशा चढ़ेगा उतना ही फिर निर्माण भी होना होगा। तो ये दोनों बातें साथ साथ बैलेंस रख करके चलना है, ये चार दिन कम से कम, तभी शक्ति भरेगी अपने अंदर। अगर मन में कोई व्यर्थ संकल्प आता है, अशुद्ध तो यहाँ आने का सवाल ही नहीं है, पर फिर भी अगर कोई व्यर्थ संकल्प आता है तो एक सेकंड में नॉट और डॉट लगा लो। कोई व्यर्थ संकल्प आता है तो नहीं, ब्रेक बहुत पावरफुल हो, मन की ब्रेक एकदम पावरफुल हो कि हमको और कुछ नहीं सोचना है, और जैसे ही नहीं कहा तो पावरफुल ब्रेक लग गई और वो संकल्प वही खत्म हो जाएगा। पर अगर भूल गए पावरफुल ब्रेक लगाना और कहीं बह गए कोई व्यर्थ बातों में, तो फिर ये नहीं सोचा है मेरा इतना समय चला गया, मुझे ऐसे नहीं सोचना चाहिए, ये नहीं ऐसे नहीं कहना चाहिए, ये नहीं ये नहीं, नहीं फिर डॉट, जो हो गया सो हो गया। कहिए न करने की, और फिर पश्चाताप में अपना समय श्वास शक्ति बर्बाद करते हैं, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था, ऐसे नहीं करना चाहिए था, ये मैंने ऐसे क्यों किया, मैंने इतना टाइम वेस्ट किया। अभी जो सोच है उसमें कितना टाइम वेस्ट हो रहा है, उसमें भी तो टाइम वेस्ट ही हो रहा है ना, क्योंकि होने के बाद सोच रहे हैं, या तो करना ही नहीं चाहिए था पर हो गया तो उसके बाद टाइम वेस्ट करेंगे सोचने में। तो बाबा कहते हैं कि चलो चेक किया चेंज हो गए, चेकिंग में ही टाइम लगाएंगे तो चेंज कब होंगे, तो उसी समय चलो ड्रामा अब आगे नहीं करना है, तब हम अपने आप को चेंज कर सकेंगे, बदल सकेंगे। तो नॉट और डॉट, डॉट माना बाबा तीन बिंदी बताते हैं, मैं बिंदु आत्मा, बिंदु बाबा, बिंदु ड्रामा, ये डॉट लगा दिया और बातें सब भूल गए, एक सेकंड में सब डिलीट हो गए, सब वॉश हो गए। तो इसीलिए आपका समय, श्वास, संकल्प, शक्ति सब बच जाएगी, और उस सम उसको आप अपने अंदर भरपूर कर सकेंगे। क्योंकि बाबा ये भी कहते हैं कि अभी बच्चे पीस पीरियड है, पीस टाइम है, तो भरने का समय है, आगे चल करके आपके सामने बहुत चुनौती आएंगी, बहुत ज्यादा आएंगी, बहुत कई प्रकार के पेपर आएंगे, कई प्रकार की बातें आएंगी, सेवा भी आपकी बहुत जबरदस्त होगी, क्योंकि आत्माएं भिखारी बन करके आपके सामने आएंगे, थोड़ी सी अंचली लेने के लिए आपके सामने आएंगे। ये नहीं सोचना है तो केवल दादियों के पास ही जाएंगे या दीदियों के पास ही जाएंगे या तो टीचर्स के पास ही जाएंगे या तो वरिष्ठ भाई बहने पुरानों के पास जाएंगे, नहीं, नयों के पास भी आएंगे, क्योंकि नयों को तो बाबा ने और ही ऊंचा वरदान दे दिया है, पुरानों से भी ऊंचा। क्या वरदान दे दिया है नयों को? लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट। तो लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट जाने वाले तो उनके आगे तो बहुत कुछ उनको करना है, तभी तो लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट जा सकेंगे ना। इसलिए ये सोचिए तो वो करेंगे हम थोड़ी करेंगे, लेकिन नहीं, आपके सामने भी आएंगी आत्माएं, क्योंकि ऐसी ऐसी परीक्षाएं सामने आएंगी जो कोई हल नहीं निकलेगा, और उस समय बाबा का ज्ञान ही काम आएगा, योग ही काम आएगा। क्यों, क्या, कौन, कहां, कैसे, कब, ये प्रश्न ही खत्म हो जाएंगे। बस एक ही सॉल्यूशन होगा, उनको शांत करना है बस, और कुछ नहीं। और वो शांति की शक्ति अगर आप में होगी तब आप दूसरों को दे सकेंगे, परंतु वो शक्ति भरेंगे कब, जब शांति का समय है। इसलिए ये चार दिन आपके लिए ये बट्टी रखिए, ताकि इतना यहाँ से भरपूर होकर जाओ जो फिर आप दे सको, इतना स्टॉक जमा करो, एक एक गुण का स्टॉक जमा करो, ज्ञान तो आपको खूब मिलेगा। सब हमारे महारथी भाई बहनों से बहुत क्लासेस भी मिलेंगे, ज्ञान योग धारणा खूब करेंगे। फिर सेवा, मनसा सेवा की भी बात आएगी, तो सेवा का भी सब्जेक्ट है इस भट्टी के अंदर भी, कैसे मनसा सेवा करनी होती है। तो चारों ही सब्जेक्ट्स आपके लिए इस भट्टी के अंदर है। ज्ञान की गहराई में भी जाना है, स्वमान में भी रहना है, नशा भी चढ़ाना है, शक्ति भी भरनी है। आज भी कल बाबा ने अकल का आशिक माशिक होकर के याद में रहना है। आशिक को माशुक के सिवा और कोई याद ना आए, कोई दिखाई न दे। पहले था ना, आशिक माशुक की बहुत कहानियां सुनते थे, पिक्चर्स भी बहुत आई थी, सोहिनी महिवाल एक हमने देखी थी वो फिल्म, बाबा की मुरली चली थी ना कि आशिक माशुक होते हैं, तो वो फिल्म उस समय आई थी। किसने देखी थी मालूम है? सोहिनी महिवाल। तो बस वो मालूम है नहीं देखी थी, तो वो आशिक माशिक थे, जैसे लैला मजनू बताते ना। हाँ जी, हाँ हीरा, हीर रांझा तो है ही, पर वो सोहिनी महिवाल वो उसमें तो खास मैं देखने गई थी, क्योंकि कहा कि इसमें बहुत बहुत प्योर इनका प्रेम है, बहुत प्योर। तो वो है नहीं सामने, लेकिन वो उसको देख रहा है और वो उसको देख रही, वो सामने है नहीं, बंधन में है, एक दो को देख नहीं सकते हैं, एक दो से मिल नहीं सकते हैं, लेकिन एक दो को देख रहे हैं, एक दो से बातें कर रहे हैं, एक दो का उनका कनेक्शन इतना पावरफुल है जो दोनों को एक जैसा अनुभव होता है, ऐसे एक जैसा होता है। और इसमें कोई विकार की बात नहीं है, देह का आकर्षण है परंतु देह में भी वो विकार का आकर्षण नहीं है, बस देखते ही रहे और कुछ नहीं, बस देखते ही रहे। तो बाबा कहते हैं, तो आशिक माशुक का बाबा इतना वर्णन मुरली में करते, आशिक माशुक उनको कहते हैं, आजकल के कलयुगी नहीं है, जो दिल दिया दर्द लिया, ऐसा ही है कलयुगी दुनिया में। दिल क्या देते हैं, 14 फरवरी के दिन एक दो को दिल बांटते हैं, पर दिल क्या बांटते हैं, दिल के हजारों टुकड़े हो जाते हैं, क्योंकि अनेकों को दिल दे देते हैं। एक भगवान को दिल दे तो दिल इतना मजबूत हो जाए, लेकिन अनेकों को दिल दे देंगे ना तो क्या हाल होगा। वो एक गीत है ना, दिल के टुकड़े हजार, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा, तो दुनिया वालों का तो ये हाल है, क्योंकि प्यार सच्चा नहीं है, स्वार्थ है, स्वार्थ है, सचमुच देखो तो केवल स्वार्थ है और कुछ नहीं है। प्यार में तो न्योछावर होना होता है, प्यार में तो त्याग होता है, ना प्यार तो कितनी ऊंची चीज है। भगवान से हम प्यार करते हैं, भले भक्ति करते हैं, भक्त लोग भगवान को याद करते हैं भक्ति के नाम पर, भक्ति माना प्रेम, पर वो प्रेम नहीं है। प्रेम की जगह क्या ले लिया है प्रेम ने, स्वार्थ ले लिया है। और त्याग और न्योछावर उसकी जगह भय ले लिया है, हाय भगवान हमको सजा देगा, भगवान सजा देगा, तो स्वार्थ और भय ने जगह ले लिया है भक्ति मार्ग में। तो इतना तमो प्रधान स्वरूप भगवान ये भक्ति का हो गया, परंतु सतो प्रधान स्वरूप क्या है, सच्चे लगन में मगन। देखो तीन चीजें आकर्षित करती है जिसमें लगन में मगन हो सकते हैं। पहली बात जो आकर्षित करती है वो है सत्यता। देखो एक दो में प्यार भी करते हैं ना तो क्यों दिल टूट जाता है, क्योंकि वो झूठ बोलता है, मान लीजिए तो झूठ बोला तो सत्यता खत्म हो गई, तो प्रेम खत्म, इसने मेरे साथ मेरे को धोखा दिया, क्योंकि झूठ बोला, छिपाया, छिपाते हैं तो फिर झूठ बोलना पड़ता है, छिपाना है तो सत्यता नहीं है। परंतु सत्यता आकर्षित करती है, और सबसे सत्य कौन है, एक शिव बाबा ही है। बाबा कहते हैं मैं अपने पास कुछ भी छिपाता नहीं हूँ, तुमको सब कुछ दे देता हूँ, कुछ भी नहीं मैं अपने पास रखता हूँ, खाली हो जाता हूँ। दुनिया में देखो सब पिता होगा, भले बच्चों को देगा लेकिन कुछ अपना हिस्सा जरूर रखेगा। पता नहीं बुढ़ापे में बेटे देंगे या नहीं देंगे तो इसलिए अपना हिस्सा तो कुछ रख ले। पर भगवान सत्य ज्ञान देते हैं, सत्य बनाते हैं, सत्ययुग की स्थापना करते हैं, तो इसलिए सत्य आकर्षित करता है। इसलिए बाबा के प्रति आकर्षण माना उस सत्यता के प्रति आकर्षण। तो सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं ना, तो तीन चीजें आकर्षित करती है। एक सत्य आकर्षित करता है, दूसरा शिवम, शिवम माना जहां से प्राप्ति होती है वो आकर्षित तो करेगी ना, कल्याणकारी है, शिव माना कल्याणकारी। तो शिवम माना जो कल्याणकारी बाप है उनसे हमें कितनी प्राप्ति होती है, तो जिससे इतनी प्राप्ति होती है उसके प्रति कितनी आकर्षित हम होने चाहिए। दुनिया वाले क्या प्राप्ति कराएंगे, वो कौन सा आधार बनेंगे। आज देखो हम भले कहे फलाना मेरा आधार बनता, मेरा आधार, वो आधार कब वो छूट जाएगा पता है क्या, पता चलेगा, एक सेकंड लगता है आत्मा गई पूरा हो गया। कोई मर जाता है जिसको हमने अपना आधार बनाया मान लो, तो वो आधार एक सेकंड में छूट गया, आत्मा उड़ गई, हिसाब किताब पूरा हो गया, तो आधार हिल गया तो हम भी हिल जाएंगे। हम तो कई बार देखते हैं कहीं किसी का शरीर छूटता है ना, तो हम लोगों को बुलाते हैं भाषण करने के लिए बुलाते हैं, तो हमने देखा है कि वो रोते तो हैं, पर रोते समय पता है क्या कहते हैं, अब मेरा क्या होगा, अब मेरा क्या होगा, वो कहाँ गया वो तो वो जाने है? वो आत्मा तो गई, इसलिए नहीं रोते हैं कि वो आत्मा हमको छोड़ के गई या कहाँ गई, पर अब मेरा क्या होगा। तो इसमें क्या समाया हुआ है, स्वार्थ समाया हुआ है ना, देखो ना है पूरा स्वार्थ। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि स्वार्थ की ये दुनिया है, दिल क्या देते हैं आधार क्या मानते हैं, स्वार्थ की दुनिया है। परंतु ये सब आधार हमारे खत्म होने हैं, ये सब कोई भी आधार रहना नहीं है। जो बाबा कहते अंत में कुछ भी नहीं रहना है, कुछ भी नहीं कर सकेंगे सिवाय अशरीरी बन के एक बाबा की याद के सिवाय, तो वही सच्चा आधार है। अब उस आधार को हमें पकड़ के रखना है, वही शिवम है, वही दाता है, उसी से ही लेना है। तो जैसे बस बाबा ही दिखाई दे, हम उसी के ही आशिक है, वही हमारा माशुक है, इन आंखों में उनको ही समाया, दिल में उनको ही समाया है। जो बहुत प्रिय होता है वो आंखों में या दिल में समाया होता है ना, जिससे बहुत प्यार होता है तो क्या कहेंगे, मेरा बेटा मेरी आंख का तारा है। तो आंख का तारा माना जैसे आंख में समाया हुआ है, और मेरा दिल का टुकड़ा है ना दिल में समाया हुआ है। तो ये आंख और दिल ये प्रेम के दो स्थान है, तो इनमें केवल बाबा को स्थान देना है। वो बिंदु को देखो, उस बिंदु में सिंधु को देखो, बस और कुछ दिखाई न दे, ये आंखें और कुछ देखे ही नहीं, तब ये आंखें पवित्र बन जाएगी। तो इसलिए वही शिवम, उससे ही मुझे प्राप्ति करनी, उस बिंदु में सिंधु से ही मुझे प्राप्ति करनी है, वही मेरा दिलवर है, दिलाराम है, उसको ही हमने अपना दिल दिया है, वही सब कुछ है। और फिर वो सुंदरम भी है, सुंदर चीज आकर्षित करती है, क्यों नहीं करती है, हर सुंदर चीज आकर्षित करेगी, क्योंकि आत्मा स्वयं सत्यम शिवम सुंदरम है। तो इसीलिए स्वयं आत्मा अपने असली स्वरूप में तो सुंदर है, गुणों में सुंदर है, तो सुंदर चीज आकर्षित करती है। लेकिन बाबा कहते हैं चमड़ी की सुंदरता नहीं, कौन सी सुंदरता, आत्मा की सुंदरता। चमड़ी की सुंदरता तो चार दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, ऐसे ही है ना। एक बार इंटरनेट में या ईमेल में किसी ने भेजा था कि 1936 में हमारी भारत की कोई मिस वर्ल्ड बनी थी, 36 में जब मिस वर्ल्ड ये कॉन्टेस्ट हुआ ना, ब्यूटी कॉन्टेस्ट, तो इंडिया की एक बहुत साल पहले, मैंने आज से 50 साल 50 60 या 70-80 साल पहले की बात है, वो अभी तक जिंदा है। तो उस समय उसका फोटो, वो फोटो दिखा, और अभी उसका फोटो, झुड़ियां आ गई, इतनी बूढ़ी हो गई या इतना हो गया, पर कहा कि ये वही है मिस वर्ल्ड। अभी वो 80-85 साल की होगी और वो उस समय की जितनी थी 20 साल की 22 साल की होगी। तो क्या है ये सुंदरता, चार दिन की चांदनी है, परंतु सुंदरता कौन सी आकर्षित करे, गुणों की सुंदरता। तो उसमें सुंदरम सबसे कौन, जो गुणों की सुंदरता वाला है, वो तो केवल एक बाबा ही है। इसीलिए बाबा को ही कहते हैं वो सागर है। तो इसलिए ये चार दिन आपको बस सत्यम शिवम सुंदरम उसको ही देखना है, उसके प्रति ही आकर्षित होना है। कोई देहधारी की याद न रहे, अपना मोबाइल वोबाइल सब स्विच ऑफ करके रखेंगे या चलता रहेगा, क्या करेंगे। पिछली बट्टियों में तो हमने बहुत स्ट्रिक्टली कहा अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दो, और हॉल में तो बिल्कुल बजना चाहिए, अब नहीं जाए। हमने देखा एक बज रहा था, पता नहीं किसका था, हॉल में तो बिल्कुल मोबाइल नहीं बजना चाहिए। और भी सारा दिन आप घर वालों को बोल दो ना कि अभी मैं चार दिन बट्टी में हूँ, बट्टी में पक रहा हूँ, मेरे साथ बात ना फोन नहीं करना, मैं स्विच ऑफ कर रहा हूँ। ऐसे कर सकते, इतनी हिम्मत दिखा सकते हैं कि नहीं नहीं वो हमको कहेंगे ऐसे क्यों कर दिया। दिखा सकते इतनी हिम्मत कि घर में इन्फॉर्म कर दो, मैं आराम घर में इन्फॉर्म कर दिया, हम आराम से पहुंच गए, कर दिया कि नहीं कर दिया। कि वो अभी सोचेंगे पता नहीं पहुंचे कि नहीं पहुंचे, ठीक भाई क्या पता, आजकल बहुत कुछ ट्रेनों का मामला कुछ है ना कुछ होता ही रहता है, कितने सुनते रहते हैं क्या क्या हादसे हो रहे हैं। लेकिन आप एक बार कह दो भगवान की छत्र छाया में हूँ, बाबा की गोद में हूँ, ये चार दिन आप कोई मुझे फोन नहीं करे, सबको कह दो। ये भी तो नहीं चलो घर में तो नहीं कहेंगे, वो दफ्तर से दुकान से ना कोई का दोस्त से सबको इन्फॉर्म कर दिया होगा ना कि मैं जा रहा हूँ मधुबन, जा रही हूँ मधुबन, अब मुझे कोई नहीं कांटेक्ट करे, मैं अपने आप कुछ भी होगा मैं खुद ही करूँगा। या जिसको काम सौंप कर आए थे उनकी याद आएगी क्या कि पता नहीं उसने वो काम किया होगा या नहीं किया होगा, बच्चे क्या कर रहे होंगे, फलाना क्या कर रहा होगा। अरे जो कर रहा होगा अच्छा ही कर रहा होगा ना, आप अच्छा कर रहे हो तो वो भी अच्छा कर रहा होगा, इसीलिए उनकी भी चिंता नहीं, उनके लिए उनका भी सोच नहीं करना वो क्या कर रहे होंगे, या ये काम दिया था पता नहीं किया होगा कि नहीं किया होगा। नहीं किया होगा तो कोई बात नहीं, आप जा करके करना ना, यहाँ सोचने से क्या होगा। तो कई फिर पता है क्या सोचते हैं, बड़ा विचित्र लगा, एक बहन कहे बहन जी यहाँ तो बहुत अच्छा लगता है लेकिन वापस जाएंगे फिर क्या होगा। अरे वहाँ वापस जाएंगे फिर क्या होगा, अभी क्यों सोच रहे हो, वो वहां जाके सोचना ना, अभी तो शक्ति भरने का समय है, अभी शक्ति भर लो। और आप जब शक्ति पूरी भर लेंगे तो वहां सामना करेंगे ना, इसमें क्या है। पर जब शक्ति भरने का समय है उस समय सोचते हैं वहां जाकर क्या होगा, तो ये शक्ति भी नहीं भर सकेंगे। जब मौका है तो उस मौके का तो पूरा एडवांटेज लो ना, पूरा फायदा लो। तो जब यहाँ है तो वहां का ही सोच रहे हैं, फिर वहां जाएंगे ओ मधुबन कितना अच्छा था, फिर यहाँ का सोचेंगे, और जहाँ है वहां का पूरा लाभ नहीं लेते हैं। तो इसलिए जहाँ हो वहां का पूरा पूरा लाभ लो, एक क्षण का लाभ लो। बाबा कई बार मुरलियों में कहते देखो यहाँ बड़े बड़े कोठे हैं, एकांत में जाके सैर करो, कोई नहीं। हमारी बड़ी दीदी जी थी ना, वो कहती थी, बहुत अच्छा दीदी जी का स्लोगन था, 5 केले रोज खाओ। याद है किसको मालूम है कौन से 5 केले है? कौन से 5 केले तो बहुत ताकत आ जाएगी, कौन से 5 केले? हाँ 5 केले, अकेले आए थे अकेले जाना है, अकेले मी। हाँ भले संगठन में हो लेकिन फिर भी अपने आप को अकेला समझना है, अकेला समझेंगे तभी मौन में रहेंगे, नहीं तो बातें करते रहेंगे, अकेला हो तो किससे बात करेंगे। हाँ तो अकेले आए हैं अकेले जाना है, अकेले में अकेला होकर मन से भी अकेला अकेले बाप को याद करना है। कितने हो गए अकेले? हो गए ना, अकेले आए हैं, अकेले जाना है, अकेले में अकेला होकर अकेले को याद करना है। ये पांच केले आप सुबह सुबह खाओ, बस जैसे ही सवेरे उठो ये पांच केले सुबह सुबह खा लो तो सारा दिन आपको इतनी ताकत मिलेगी जो बात मत पूछो। और बट्टी माना, बट्टी में क्या करना होता, बट्टी में जो चीज जाती है वो बदल कर जाती है, बदल कर निकलती है, वैसे ही नहीं वापस निकलती है। कोई भी चीज आप आग में डालो तो क्या होता, वो ही वापस वैसे ही निकल आएगा आग से? नहीं, बदल के निकलेगा। डिपेंड्स कौन सी चीज है। इसको बाबा कहते हैं यहाँ सोना डालो तो खाद निकल जाएगी, क्योंकि सोने का जो टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट होता है ना वो बहुत हाई होता है। बाकी जितने भी और मेटल्स हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट है ना पिघलने का जो जो हीट है वो कम होती है, इसलिए वो जल्दी पिघल जाते हैं, वो निकलते जाते हैं और सोना शुद्ध हो जाता है। तो इसीलिए आत्मा सच्चा सोना है, तो मुझे सच्चा सोना बन के जाना है इस भट्टी के अंदर, सारी खाद निकल जाए, सब कुछ व्यर्थ अशुद्ध जो कई बात जो कुछ अभी तक भरा हुआ था ना, किसके प्रति भी नफरत वैर दुश्मनी ईर्ष्या क्रोध ये सब कुछ यहाँ खत्म हो जाए और आत्मा प्योर सोना बन करके निकले, ये भट्टी का लक्ष्य रखना है। फिर दूसरा, आग में जब डालते हैं कोई नरम चीज डालते हैं जैसे मिट्टी की ईंट नरम होती है, तो मिट्टी की ईंट आग में डालने से क्या होता है, मजबूत हो जाती है, फिर उसको गिराओ तो भी टूटेगी नहीं क्योंकि मजबूत हो गई, आग में पड़ने से मजबूत हो गई। बड़े भट्ठे भट्ठे देखे ना रास्ते में, इतने भट्ठे होते हैं जिसमें ये ईंटे पकती है, तो ये भी तो भट्ठा है ना, भट्ठी कहो भट्ठा कहो है। तो यहाँ कोई कोमल दिल वाला हो, नाजुक दिल वाला हो, किसी ने कुछ कह दिया है, ऐसे कैसे मुझे कह दिया, बड़ा नाजुक छुई मुई, बाबा जिसको कहते छुई मुई, हाथ लगाया वो फिस वो पौधे होते ना छुई मुई के, देखे इतने छोटे छोटे होते हैं, पर जरा सा नजदीक हाथ गया भी ना वो जो पत्ता है ना वो नीचे चला जाएगा, तो छुई मुई। तो बाबा कहते छुई मुई नहीं बनना, मजबूत बनना, किसी ने कुछ कह दिया कोई बात नहीं, एक कान से गया गया अंदर तो दूसरे कान से निकल गया, अंदर में थोड़ी दिल में समाना होता, कुछ भी नहीं, चलो कुछ भी जिस नजर से वो देखता है उसकी नजर है, मैं जो हूँ वो तो बाबा ने मुझे जिस रूप में देखा है मैं तो उस रूप से अपने आप को देखूं। इसीलिए छुई मुई नहीं बनना है, कोमल नहीं बनना है, कमजोर नहीं बनना है, किसी ने कुछ कहा तो निराश हो गए, उदास हो गए, नहीं सब डोंट केयर करना है। बाबा ने कितना डोंट केयर किया, अगर बाबा ऐसे बाबा के सामने कितनी बातें आई लेकिन बाबा कभी निराश हुए क्या? शिव बाबा अभी इतना बड़ा कार्य मैं नहीं कर सकता, ऐसे कहा कभी ब्रह्मा बाबा ने? कभी नहीं कहा, अंतिम दिन भी नहीं कहा, अंतिम दिन तक पूरी सेवा की। तो कोमल भी नहीं बनना है, स्ट्रांग बनना है। आया गया छू, हाँ धोबी के घर से छू उसने कहा ना बाबा ने कर, तो इसीलिए घबराना नहीं। फिर इसमें कोई कठोर चीज होती है ना कठिन, तो वो आग में डालने से क्या होता है, तीसरी चीज जैसे टमाटर है, बैंगन है, आलू है, अब थोड़ा सख्त होता है तो आग में डाला तो नरम हो जाता है, सॉफ्ट। तो सॉफ्ट माना अंदर में फ्लेक्सीबल, ये नहीं बहुत गर्मी है नहीं सहन कर सकता हूँ, ये नहीं कर सकता हूँ, ये है, बाबा कहते गर्मी सर्दी सब सहन करना है, हा? अभी कोई बारिश आ गई है, ये बारिश क्यों आई अभी तो हमको यहाँ, मैंने किसी हमेशा कही होता ना हर समय कटाक्ष करना या फिर दूसरा होता है ना कंप्लेन करना, कंप्लेन ही करते रहेंगे या नेगेटिव देखना, पर बिल्कुल नहीं, इतना स्ट्रांग भी बनना है पर इतना फ्लेक्सिबल भी बनना है, जो जैसा है एक्सेप्ट करो, एक्सेप्ट उसको स्वीकार करो, हर एक को स्वीकार करना है जो है जैसा है। भगवान ने हम सबको स्वीकार किया है ना, हम कैसे थे, पर भगवान ने हमको स्वीकार किया तो हमको भी सबको स्वीकार करना है। तो तीसरी चीज, पहली बात बताई कि हाँ सोना सच्चा बन के जाना है, दूसरा हाँ स्ट्रांग बन के जाना है, तीसरा फ्लेक्सिबल मोल्ड हो सकते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड बिकॉज इट कैन मोल्ड। गोल्ड जो सोना होता है ना, जब वो शुद्ध होता है तो वो मुड़ सकता है, उसमें बहुत वो धातु होते हैं ना अंदर, तो वो बड़ा कठिन हो जाता है उसको, ये मना बड़ा मुश्किल होता है उसको मोड़ना। पर जो सच्चा सोना होता है उसको जल्दी मोड़ सकते हैं। तो इसीलिए सच्चा सोना भी बनना है, पर इतना ही स्ट्रांग बनना है, इतना ही फ्लेक्सिबल बनना है जो मुड़ भी सके। और चौथा, कोयला डालो तो क्या होता है, आग में राख बन जाता है। तो बिल्कुल दुनिया राख हुई पड़ी है ये महसूस करे, कितने काले कोयले हैं दुनिया में, हम भी ऐसे ही थे, पर बिल्कुल सब कुछ अभी बदल गए। सब कुछ एकदम ऐसे बदल के जाओ जैसे कि हम वो पुराने थे ही नहीं, ऐसी भट्टी का अनुभव करो। तो कोयला काला वो सफेद हो जाता है ना, राख हो जाता। और पांचवी बात, पांचवी चीज क्या डालते हैं आग में, कोई किचरा डालते हैं और आग जलाते हैं, तो किचरा क्या होता है, भस्म होता है। तो वो जो कार्बन है ना वो ऊपर उड़ जाता है, चिमनियों से देखते हैं ना कार्बन उड़ता रहता है धुआं, क्योंकि जल गया, अंदर से जल गया, तो हमारा सारा किचरा जल जाए। कुछ भी किचरा साथ में नहीं लेके जाना है। बस ये पांच बातें इस भट्टी में हमको संपन्न करके जानिए। एक तो सच्चा सोना बन के जाना है, दूसरा स्ट्रांग बन के जाना है, जो कोई भी बातें मेरे सामने आए मैं वो हलचल में नहीं आऊं, और तीसरा फ्लेक्सिबल भी बनना है, मुड़ भी सको, सबको एक्सेप्ट भी करना है, और चौथा बिल्कुल राख हो गए माना भस्म बन गए, सबको दुनिया भस्मीभूत हुई पड़ी है, इसीलिए नष्टो मोहा स्मृति लब्धा होकर के जाना है। और पांचवा, पांचवा क्या बताया, जो किचरा है वो धुआं बन के उड़ जाए, इतना अग्नि में पकना है। कल बाबा ने मुरली में कहा कि तलवार की धार, योग क्या है, धार है, जौहर है, तो धार क्या करती, काटती है, तो हमारे पापों को काटता है ये योग। तो इसीलिए ऐसा हम योग की अग्नि जलाएं जो पाप तो कटे ही, आत्मा पावन बने, एकदम परिवर्तित हो जाए, सच्चा सोना बन जाए, ताकि हम बाबा के घर में उड़ सके, संपन्न बन के उड़ सके। संपन्न तो बनना ही है, बाबा कहते हैं ये नहीं सोचो अंत में बनेंगे, अभी बनना है, भरपूर होके जाना है। आप जाएंगे तो लोग आपसे पूछेंगे भट्टी में क्या अनुभव किया, चौथे दिन यहाँ भी आपसे पूछेंगे। और आपको मैं बता दूं, यहाँ पर हमारे गंगाराम भाई आते हैं, वो ओम शांति मीडिया में डालते हैं अनुभव, जो भट्टी के अनुभव है ना वो रिकॉर्ड करते हैं। तो आपको उसी प्रकार से चौथे दिन कुछ ऐसी तैयारी करना, आप क्या अनुभव अपना सुनाएंगे, कैसे मैं एकदम बदल गया हूँ, इस भट्टी से मैंने क्या पाया है, वो लक्ष्य ऊंचा रखेंगे तो आप चौथे दिन ये अनुभव भी सुना सकेंगे, ताकि दूसरे भी उसको पढ़ करके प्रेरणा ले सके। आपकी रिकॉर्डिंग भी होगी, रिकॉर्डिंग भी करेंगे, क्योंकि पीस ऑफ माइंड चैनल में भी देंगे, रेडियो मधुबन में भी देंगे, अभी तो हमारे सेवा के कितने साधन हैं, तो अखबार भी है, रेडियो भी है और टीवी भी है, तो उसमें आपका आ जाएगा, रिकॉर्डिंग करने आएंगे चौथे दिन, मालूम है ना आपको। तो अभी तक जितने भी भट्टियां हुई है उन सब भट्टियों में रिकॉर्डिंग की, फिर उसमें से चुनते हैं कौन सा सबसे अच्छा है, तो वही फिर रेडियो में भी देते हैं, कि रेडियो में तो आवाज ही जाएगी, पर टीवी में भी देते हैं, खास शूटिंग करते हैं, और अखबार में भी डालेंगे, आपका फोटो भी लेंगे, मतलब वो सब करते हैं, वो लेकर आता है सब, हमारे गंगाधर भाई जो ओम शांति मीडिया के। तो इन बठियों से भी पूरा लाभ आप तो लेंगे ही, लेकिन और भी लेंगे दूसरे पढ़ करके, सुन करके और देख करके। तो इस लक्ष्य से आपको ये बठ्ठी करनी है कि ताकि यहाँ से भी आप जाओ, एक सैंपल बन के जाओ, एग्जाम्पल बन के जाओ, और लोग कहे कि वाह मधुबन से तो एकदम बदल कर आई, एकदम बदल कर आया, पक कर आया, सच्चा सोना बन कर के आया, सब मैल धुल गई। दुनिया में तो गंगा स्नान करने जाते ना, गंगा में जाएंगे, हर गंगे हर गंगे, पाप गए लंगे, ऐसे करते ना। आप लोगों ने गंगा स्नान किया है ना, जिसने किया तो उठाओ, सबने किया होगा। जी तो गंगा स्नान करते समय क्या कहते हैं, हर गंगे पाप गए लंगे, माना सब पाप चले गए, सब खत्म हो गए, पाप खत्म हो गए, माना इतना मैं स्वच्छ बन गया, इतना संपन्न बन गया, इतना सुंदर बन गई आत्मा। तो वो तो परंतु वो आत्मा पावन बनती है तो पता ही नहीं, वो समझते शरीर को ही शुद्ध करना है। तो इसलिए बाबा ने हमारा वो तो सब खत्म कर ही दिया, जो भक्ति मार्ग की अंधश्रद्धा थी वो तो खत्म कर ही दी, लेकिन अंधश्रद्धा नहीं है, अंधविश्वास नहीं है, लेकिन ये सच्चा विश्वास, सच्ची श्रद्धा। तो अभी हम समझा अभी क्या करना है। तो ये चार दिन की अनुभव अनुभूति इतनी पक्की करके जानी यहाँ, जो सब कहे बिल्कुल बदल गए, ऐसे हो सकता है, हो सकता है, बाबा पूछते हो सकता है, हो सकता है, हाथ उठा हो सकता है। तो वाह वाह वाह, देखो बाबा देख रहे हैं, बाबा देख रहे हैं, अभी अपने लिए ताली बजाओ। ओम शांति।
शिलु बहन ने आपको बड़े सुंदर रीति से और बड़े सरल शब्दों में भक्ति का लक्ष्य स्पष्ट कर दिया। सभी को भक्ति का लक्ष्य स्पष्ट हो गया होगा ना, कितनी बातें कही, क्या बनकर जाना है यहाँ से, हाँ, और उसके लिए तैयारी क्या करनी है, मुख के मौन के साथ मन का मौन, और क्या करना है, और क्या करना है, और क्या बताया उन्होंने, हाँ, वो तो बनकर जाना है, हाँ, लेकिन और क्या करना है, मुख के मौन के साथ, मन का मौन के साथ और क्या करना है, हाँ, आत्म अभिमानी स्थिति का अभ्यास करना है ना, और क्या करना है, अपने सब मोबाइल फोन को बंद कर देना है ना। अभी इधर उधर सारे थॉट्स हमारे जो हैं, प्रोफेशनल थॉट्स, देन पर्सनल थॉट्स, फैमिली रिलेटेड थॉट्स जो भी है ना, उनको क्या करना है, क्लोज, वो सभी अभी मेमोरी से डिलीट हो जाएंगे, है ना, हमारी जो स्मृति से वो सब निकल जाएंगे, और अब केवल हम भट्टी में सब यहाँ पर आ गए हैं। तो कितनी सुंदर बातें उन्होंने बताई, और कैसे परिवर्तन होना, और कितने सिंपल, हाँ, पांच केले खाने हैं, हाँ, पांच केले खा लेना रोज, ताकत आ जाएगी सवेरे सवेरे, हाँ, पांच केले याद है ना हर एक को, तो पांच केले भी रोज खाने हैं। तो ये चार दिन इस चीज का बड़ा अभ्यास करना है, ठीक है।